ओम शांति, ओम शांति। बाबा के तो हम सभी प्यारे बच्चे हैं, लेकिन बेहद बेहद प्यारे बच्चे कौन कौन होंगे, कौन से होंगे? गीत में सुना ना, जो दिल के सच्चे हैं। पर दिल के सच्चे कैसे बनेंगे? जब बाबा जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे और उसे अपने जीवन में लाएंगे। अगर जीवन में नहीं लाते हैं, कई बच्चे ज्ञान की लबाड़ तो बहुत मारते हैं, बहुत नशा दिखाते हैं। मैं तो बहुत ज्ञान को समझा हूँ, मैं तो इतने बड़े बड़े भाषण कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञान देता हूँ, तो अभिमान बहुत आ जाता है और वो उल्टा अभिमान है। तो उल्टा अभिमान क्या करेगा, वो तो गिराएगा। लेकिन जिसको सच्चा स्वमान है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, कौन मुझे ज्ञान दे रहा है, और उस पढ़ाई पर पूरा ध्यान होगा, उसको जीवन में लाएगा, तभी वो कितना निर्माण बन जाएगा, निर्माणता नम्रता आएगी। अगर अभिमान आ जाता है तो क्या कहेंगे, नम्रता नहीं है तो ये तो उल्टा नशा है। तो बाबा कहते उल्टा नशा नहीं होना चाहिए। वैसे भी दुनिया में भी देखते हैं, जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, अगर उस बड़ी पोस्ट पर भी है तो उतना ही वो निर्माण होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। और जितना नम्र होगा उतना ही उसको सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई तो बाबा देते हैं और वो सहज भी है, बच्चे पढ़ते भी हैं, बाबा से प्यार भी है, लेकिन पढ़ाई का उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। तो उल्टा नशा न चढ़े उसके लिए अपने ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए। तो बाबा का ज्ञान सुनने वालों को जो सच्चा नशा होगा वो क्या करेंगे, उल्टा नशा नहीं है बस सच्चा नशा होगा तो वो क्या करेंगे। तो आज बाबा ने वो सब बातें बताई है, सुनते हैं बाबा की मुरली। आज की तारीख भी वंडरफुल है, 24/12/24। 24 का आधा करो 12, फिर 12 को डबल करो 24, तो 24/12/24। मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो। अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? वैसे कई बार प्रश्न बाबा ये भी पूछते हैं कि किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है वो तो पता है, पर किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ता है? उत्तर है, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाबा की महिमा करते हैं, दिल से, यहां दिखावा नहीं, दिल से, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है। तो कैसे पता चले कि अब हमें उल्टा नशा नहीं है? कैसे पता चले कि हमें उल्टा नशा है? हाँ, दोनों की पहचान तो हो जाती है ना। तो अगर किसी ने कुछ कहा और अपमान महसूस हुआ, मानो उल्टा नशा है, और अपमान महसूस नहीं हुआ, वो अपने स्वमान में स्थित है, माना उल्टा नशा नहीं है, ये उसकी निशानी है। तो बाबा कहते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है। जो बाप को साधारण समझते हैं, इतना ज्ञान बाबा देते हैं लेकिन वो समझते ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो साधारण समझते हैं बाप को, वो बाप को याद भी नहीं कर सकते। याद करे तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दे, बाबा को सुनाए ये सब बातें। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता कि बच्चे कहां मूर्छित तो नहीं हो गए, फलाना बच्चा का कोई समाचार नहीं। बाबा कई बार पूछते थे, यशु दादी से पूछते थे, फलानी का समाचार कुछ आया है? तो दादी कहती थी, बहुत दिनों से उसने कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ कहीं तो देखो, दादी बाबा कहते थे उनको, उनकी टीचर से पूछो कि वो ठीक है ना। जैसे लौकिक बच्चों को भी कितना ध्यान, लौकिक बच्चों का भी पिता को कितना ध्यान रहता है, बच्चे ने फोन नहीं किया, बच्चे ने चिट्ठी नहीं लिखी, क्या बात है, क्यों नहीं समाचार दिया है? तो बाबा कहते हैं, जो बाप को साधारण समझते हैं वे बाप को याद नहीं कर सकते, याद करे तो अपना समाचार भी बाप को सुनाए। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता है कि बच्चा का मूर्छित तो नहीं हो गया। अभी साकार में तो बाबा को पत्र लिखते थे बच्चे, बहुत पत्र आते थे बाबा के पास, टू शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, तो पोस्ट ऑफिस वाले भी समझ जाते थे ये ब्रह्मा कुमारियों के लिए, वो शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, केयर ऑफ वो आता था। तो पर अभी तो हम क्या करेंगे, अभी भी बाबा के तो लंबे चौड़े चिट्ठे कई लिखते हैं, दादियों को लिखते थे बहुत, चलो अभी भी लिखते हैं, कोई ऐसी समस्या है लिखते हैं, लेकिन बाबा कहते से जो अपना अंदर का समाचार वो बाबा को सुनाओ, अंदर ही अंदर सुनाओ। बाबा सब सुनते हैं, पत्र भी लिखना हो तो कई पत्र लिख करके बाबा के बॉक्स में डालते हैं, ये भी अच्छा है। हाँ बाबा कहते हैं, आपने लिखना शुरू किया या अंदर सोचा ही तो बाबा के पास पहुंच गया, इतनी क्विक मिशनरी है बाबा के पास। तो बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता कि बच्चा कहां मूर्छित तो नहीं हो गया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाप माना बेहद की आत्माओं का बाप, वो हद का बाप हर एक जीव आत्मा का अलग है, ये नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते हैं। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है तो सब एक रस धारण, एक जैसा धारण नहीं कर सकते हैं ज्ञान। कोई 1% तो कोई 95% धारण करते हैं। 1% और 95% कितना अंतर हो गया, ये तो समझ की बात है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना, इसलिए जो ज्यादा धारण करते हैं क्या निशानी है उसकी, वो अमल में भी लाते हैं। तो समझो कि उसने ज्ञान की धारणा बहुत की है, और जिन्होंने धारणा नहीं की है तो 1% मुश्किल से ज्ञान समझाए। तो बाबा कहते हैं ये तो ये क्यों होता है, क्योंकि सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना है ना, तो इस घराने में तो सब चाहिए, राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा में भी सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं, प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं, हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी में रह सकती है, अगर पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी धारण की है तो वो छिपी थोड़ी रहेगी अंदर, वो प्रैक्टिकल में दिखाई देगी ना, व्यवहार से कर्मों से, तो कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है, लौकिक में भी ऐसे होता है, पता चलता है ये बच्चा पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा है और उस अनुसार फिर उनको पद भी मिलता है। तो बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान होगा, इम्तिहान होगा। अभी तो बाबा कहते हैं बाप के रूप में है, फिर जब धर्मराज के रूप में होगा तो फिर तो पूरा इम्तिहान होगा ना उस समय। तो आगे चल इम्तिहान होगा, क्यों क्यों इम्तिहान जरूरी है, क्योंकि बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो न सके, ट्रांसफर हो न सके। तो इम्तिहान से पता चलता है ये कितनी पढ़ाई की है, कितनी धारणा की है, और फेल हो गया तो उसी क्लास में बैठेगा, उसको थोड़ी आगे बढ़ाएंगे, आगे ट्रांसफर होगा। बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो न सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, परंतु अभी भी समझ सकते हो। चलो पिछाड़ी में तो मालूम पड़ेगा ही, लेकिन वो टू लेट हो जाएगा, पर अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। क्यों बाबा ऐसे कहते हैं, हर एक समझ सकता है मैं किस पद के लायक हूँ, क्योंकि जब बाबा पूछते हैं कि लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, तो कौन बनेगा, तो हर एक हाथ उठा लेता है, भले उसके लायक हो या नहीं भी हो तो भी हाथ तो उठा लेता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी लायक है नहीं, परंतु उठा लेता है, हाँ जैसे कि मैं बहुत बहुत लायक हूँ। तो बाबा कहते हैं अरे लौकिक जो स्टूडेंट्स होते उनको भी पता चलता है कि मैं कितना लायक हूँ, कितनी मैंने पढ़ाई की, उस अनुसार मेरे मार्क्स आएंगे। बाबा कहते हैं वो फिर भी समझदार है लौकिक स्टूडेंट्स। तो बाबा कहते हैं तो परंतु अभी भी समझ सकते हो कि हम किस पद के लायक हैं। हर एक समझ सकता है मैं किस पद के लायक हूँ, भल लज्जा के मारे सभी हाथ तो उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं। हाथ तो उठा लेते हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, पर उसके लायक तो है ही नहीं। तो बाबा कहते अंदर में समझते भी है, लेकिन फिर देखा देखी में दूसरे उठा रहे, मैं कैसे नहीं उठाऊं, तो उठा लेते हैं। समझते भी हैं कि हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा लेते हैं, ये भी अज्ञानी कहेंगे। ऐसे हाथ उठा लेते तो ये भी अज्ञानी कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अकल तो लौकिक स्टूडेंट्स में होता है। अंदर डर रहता है कि पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं, पता नहीं कितनी मार्क्स मिलेगी, वो ज्यादा समझदार है लौकिक स्टूडेंट्स। और ये अलौकिक स्टूडेंट्स आप सब में हाथ उठा देंगे। तो बाबा कहते हैं अकल जास्ती तो लौकिक स्टूडेंट्स में होता है, वो समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक है या नहीं, पास होंगे या नहीं। वो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, वो भी समझ सकते हैं। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे, पढ़ता है नहीं, धारणा है नहीं, लायक है नहीं, और सोचे मैं पास विद ऑनर बनूंगा, तो उसको तो बाबा क्या टाइटल देते हैं, हाँ मियां मिठू। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे, यहाँ तो कई बच्चों को इतनी भी अकल नहीं है। क्यों अकल नहीं है, बेअभिमान बहुत है। अब इतना देह अभिमान है तो कहाँ धारणा हुई होगी ज्ञान की। देह अभिमान बहुत है, बोल आए हैं ये देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए ना। देवता बनने की चलन है ही नहीं और कहेंगे हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भाव कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। अगर कायदे से प्रीत होती बाबा से तो सब धारणा भी करते जो बाबा श्रीमत देते, तो कायदे से प्रीत नहीं है, इसीलिए समझ रहे ज्ञान मेरे पास बहुत है। तो बाबा क्योंकि कायदे से बाप से प्रीत नहीं है, तो बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। चलो दुनिया वालों के लिए तो ये समझ है कि भाई भगवान को नहीं जानते, भगवान का मानते नहीं, तो चलो विपरीत बुद्धि है। लेकिन बाबा के बच्चे जानते भी हैं बाबा को, समझते भी हैं पूरा ज्ञान, पर फिर भी बाबा कहते हैं उस पर चलते नहीं है तो क्या कहेंगे, विपरीत बुद्धि। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते हैं तो फिर वो क्या समझेंगे, जिनको ज्ञान ही नहीं है वो क्या समझेंगे। बच्चों को ही पूरी समझ नहीं है विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि में अंतर। बाप को याद करना ये तो हुई गुप्त बात, ये गुप्त ही गुप्त है याद। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है, पढ़ाई में नंबर वार होते हैं, हाँ याद में तो गुप्त है तो इसलिए पता नहीं चलता है, पढ़ाई में तो पता चल जाता है। तो पढ़ाई में नंबर वार होते हैं, एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे। बाबा समझते हैं अभी तो बेबी है, धारणा नहीं है मतलब बेबी है ज्ञान में, तो अभी तो बेबी है, हाँ छोटा बच्चा है। ऐसे बेहद के बाप को तीन तीन चार चार मास याद भी नहीं करते हैं, मालूम कैसे पड़ता कि याद करते। अगर बाबा को समाचार नहीं देते, बाबा को लिखते नहीं, अपनी स्थिति का वर्णन नहीं करते बाबा को, तो बाबा कैसे समझेंगे। तो बाप को पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ, क्या क्या सर्विस करता हूँ। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया है, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया है। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं, हाँ बहुत अच्छा सर्विस समाचार लिखते थे बाबा को। बाबा भी समझते हैं हाँ बच्चा जीता है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते, सच्ची सर्विस जो करते हैं वो कभी छिप नहीं सकते हैं। बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। बे अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते हैं कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप भी याद कैसे करेंगे। इसलिए बाबा क्या कहते थे, मिठरा घुर तघुरे, आप मुझे याद करो तो मैं याद करूँ ना। बाबा कब याद ही नहीं करते और हम समझते बाबा हमको याद करे, बाबा क्यों याद करेंगे, तुम पहले याद करो ना। तो बाप भी याद कैसे करेंगे, याद से याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जान कर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं इसीलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भबका आदि थोड़ी दिखाएगा, मैं भगवान हूँ, मैं ये चमत्कार कर सकता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, बाबा कोई ऐसे थोड़ी नशा दिखाएगा। बाबा कोई भबका आदि थोड़ी दिखाएगा। भगवान वाच, मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राज योग सिखलाता हूँ। तुम ऐसे थोड़ी समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं। बाबा कहते बच्चे समझते तो है लेकिन जो अभिमान में रहेंगे वो थोड़ी समझेंगे। तो बाबा कहते तुम ऐसे थोड़ी समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये नशा हो, अगर ये नशा हो तो अपार खुशी का पारा चढ़ा रहे पर खुशी खत्म हो जाती है, नशा उतर जाता है, मायूस हो जाते, दुखी हो जाते, बना ये नशा कायम तो नहीं रहा ना। ये नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। गीता पढ़ने वाले भल कहते हैं, वो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान वाच मैं राजयोग सिखाता हूँ, बस इतना जरूर कहते हैं। अब उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी रहेगी, अब वो पढ़ लिया गीता में लिखा है कि मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, अब पढ़ लिया, पर मैं राजाओं का राजा बनूंगा राजयोग सीख करके, ये थोड़ी नशा चढ़ता हूं। तो बाबा कहते हैं उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा तो पहले पहले गीता पढ़कर पूरी की, हाँ गीता पढ़ ली ये मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, बस पढ़ लिया, तो गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधे दोरी में। बस तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा जिनको वो सचमुच ज्ञान का नशा नहीं है, धारणा नहीं है, तो उनके उनको ऐसे बुद्धि में नहीं आएगा कि मैं ये बनूंगा। जैसे दुनिया वाले बस सुन लेते हैं, बस नशा थोड़ी चढ़ता और न वो बनते हैं, यहाँ तो हम बनते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय देना है। बोलो, अब क्या बोलो उनको जो पहले पहले आते हैं, बोलो भारत स्वर्ग था अभी नर्क है, ये कलयुग है इसे स्वर्ग थोड़ी कहेंगे, किससे पूछो ये अभी समय जो चल रहा है ये स्वर्ग है या नर्क है, तो भी भिन्न भिन्न उत्तर देते हैं ना, तो इसे स्वर्ग थोड़ी कहेंगे, ये तो कलयुग है, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग भी है और कलयुग भी है, ऐसे तो नहीं कहेंगे अभी सत मेरे लिए तो सतयुग है, किसके लिए कलयुग होगा, मेरे लिए सतयुग, ऐसे तो नहीं कहेंगे। किसको दुख मिला तो कहेंगे वो नर्क में है, किसको सुख है तो कहेंगे हम स्वर्ग में हैं, ऐसे तो बहुत कहते हैं। दुखी मनुष्य नर्क में है और हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, तो हम तो स्वर्ग में बैठे हैं ऐसे कहते हैं। महल माड़ियां मोटर आदि है तो समझते हम तो स्वर्ग में हैं, गोल्डन एज आयरन एज एक ही बात है, अब सतयुग कहो कलयुग कहो एक ही बात है, स्वर्ग कहो नर्क कहो एक ही बात है, हम तो स्वर्ग में हैं ऐसे समझते हैं। तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है, बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं, वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, अपनी पहचान खुद देते हैं, गीता में भी है मैं जो हूँ मैं जैसा हूँ मैं अपनी पहचान खुद देता हूँ, अब वो खुद देता हूँ उसके लिए आता हूँ तो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे, अभी तुम चित्र में दिखाते हो, कौन सा चित्र, आत्मा और परमात्मा का जो चित्र दिखाते हैं ना, तो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक जैसा ही है, आत्मा भी ज्योति बिंदु है परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, दोनों का रूप एक जैसा ही है, उसमें फर्क नहीं है। आत्मा और परमात्मा कोई छोटी बड़ी नहीं है, ये नहीं कि आत्मा की साइज छोटी और परमात्मा की साइज बड़ी, साइज में दोनों एक जैसे हैं, सभी आत्माएं हैं वो भी आत्मा है, वो सदा परम धाम में रहते हैं इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। सिर्फ तुम आत्माएं, अंतर क्या है, वो परम धाम में रहते हैं, ज्ञान गुण शक्तियां कर्तव्यों में परम है, सबसे श्रेष्ठ है, तो इसलिए परम आत्मा है, लेकिन हमारे और उनमें क्या अंतर है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता हूँ, सृष्टि मंच पर तुम आत्माएं जैसे आती हो, गर्भ में प्रवेश करके सृष्टि पर आती हो तो हाँ करती हो, फिर पाठ बजाती हो, वैसे मैं नहीं पाठ बजाता हूँ जब मैं गर्भ में प्रवेश करता हूँ करूँ। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता हूँ, मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। ये बातें कोई बाहर का समझ न सके। बात बड़ी सहज है, मैं आता हूँ पराए तन में, ब्रह्मा तन में प्रवेश करके मैं ये ज्ञान देता हूँ, बात तो सहज है, लेकिन कई नहीं समझते। बात बड़ी सहज है, फर्क सिर्फ इतना है जो बाप के बदले वैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसलिए मुझ गए ना। आज जो मैं परकाया प्रवेश करता हूँ, प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, मूढ़मति मनुष्य मुझे तुच्छ समझकर गालियां देते हैं, अब ये श्री कृष्ण कैसे कहेगा? वो तो कह नहीं सकता है, जरूर वो निराकार है, वो अदृश्य है, इसी वो कह सकता है, क्योंकि नहीं समझते हैं लोग उन्हें। तो फर्क सिर्फ इतना है जो बाप के बदले वैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या श्री कृष्ण ने वैकुंठ से नरक में आके राजयोग सिखाया? वो तो वैकुंठवासी है श्री कृष्ण, तो क्या वैकुंठ से आकर के राजयोग सिखाया? या श्री कृष्ण कैसे कह सकता है देह सह देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो, ये भी गीता में है, तो श्री कृष्ण कैसे कहेगा? उसको अपनी भी अपनी देह है, तो कैसे कह सकता है श्री कृष्ण? कैसे कह सकता है देह सहित आदि माम एकम याद करो? देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? चलो श्री कृष्ण ने कहा, अभी श्री कृष्ण को हम याद करेंगे, तो श्री कृष्ण को याद करने से पाप कैसे कटेंगे? श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा, और श्री कृष्ण एक छोटा बच्चा, और कहां मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूं? श्री कृष्ण तो जवान दिखाते ना, कोई बुजुर्ग थोड़ी दिखाते जिसके, चलो भगवान उनके तन में आया परंतु उसको जवान दिखाते हैं, या बच्चा श्री कृष्ण वैसे दिखाते हैं, पर मैं तो बुजुर्ग तन में साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ, तो कितना फर्क हो गया? इस एकज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं। न मैं नरकवासी हूँ, न मैं सर्वव्यापी हूँ, न श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण भी सर्वव्यापी नहीं है। श्री कृष्ण के लिए कई समस्या, भाई कहाँ है श्री कृष्ण? वो तो सब जगह है, सब जगह है श्री कृष्ण, यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है, सब जगह। तो बाबा कहते हैं, न मैं सर्वव्यापी हूँ, न श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है, हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। न मुझे शरीर है, न मेरे शरीर का कोई नाम है। जितने भी नाम सहस्त्र नाम बताते शिव के, वो तो सब शिवलिंग के लिए ही कहते हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। न मुझे शरीर है, न मेरे शरीर का कोई नाम है, मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ, तो इनका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। जिस बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है, शिव बाबा का नाम ब्रह्मा नहीं है, मुझे सदा शिव ही कहते हैं, सदा शिव कल्याणकारी, सदा शिव, तो मुझे सदा शिव ही कहते हैं। मैं ही सर्व का सदगति दाता हूँ। आत्मा को सर्व का सदगति दाता नहीं कहेंगे, मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, ये श्री कृष्ण कैसे कहेगा? तो बाबा कहते हैं, आत्मा को सर्व का सदगति दाता नहीं कहेंगे, परमात्मा की, हाँ बाबा कहते परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? तो मैं सदगति दाता हूँ, फिर चलो वो तो सदगति में है श्री कृष्ण, परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? जिसकी सदगति होती है उसकी दुर्गति भी होती है, अब शिव बाबा की तो न सदगति की बात है न दुर्गति की बात है, वो तो सबसे न्यारा है। तो बाबा कहे परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? आत्मा की ही दुर्गति होती है और आत्मा की ही सदगति होती है। ये सभी बातें विचार सागर मंथन करने की है। इस दुनिया में सब कुछ सापेक्ष है, सब कुछ सापेक्ष है, कंपेरेटिव रिलेटिव इसको कहते हैं, सापेक्ष। किसी से भेंट नहीं कर सकते हैं, सब अलग अलग भी है और भेंट करते हैं तो एक जैसा कोई भी नहीं है, सब अलग अलग है। तो या तो भेंट किया जा सकता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन परमात्मा के लिए भेंट नहीं कर सकते। क्यों भेंट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उस जैसा कोई है ही नहीं, हाँ, जो भेंट करे कि ये कैसा है, ये कैसा है, वो तो एक ही है, इसलिए उसको निरपेक्ष कहते हैं। और दुनिया में जो भी है सब सापेक्ष है। ये हॉल बड़ा है क्योंकि इसकी भेंट में छोटा हॉल है, पर अगर वो जो छोटा हॉल है, हाँ चलो मेडिटेशन हॉल है, उसको हम कहेंगे छोटा इस हॉल की भेंट में, लेकिन मेडिटेशन हॉल की भेंट में हिस्ट्री हॉल उनसे छोटा है। तो छोटा बड़ा ये तो भेंट किए जाते हैं ना, लेकिन परमात्मा के लिए ऐसे भेंट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन जैसा और कोई है ही नहीं हॉल, उन जैसा कोई आत्मा है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सदगति होती है। तो ये सब बातें विचार सागर मंथन करने की है, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती है। अहंकार है ना, तो आगे वो विचार सागर मंथन भी नहीं कर सकते। अहंकार है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, बोली भी नहीं पढ़ेंगे, योग भी नहीं करेंगे, हाँ मैं सब जानता हूँ। तो बाबा कहते हैं तो माया उनकी बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती है, दिन भर झर मुई झग मुई में ही टाइम वेस्ट करते हैं। अब वो कहाँ टाइम बिताएंगे, विचार सागर मंथन नहीं करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, तो न सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कहाँ टाइम बिताएंगे, झर मुई झग मुई, इसकी बात उसकी बात उसकी बात, यही करते रहेंगे। दिन भर झरमुई झगमुई में टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है, हाँ माया फोर्स करती है कि भगवान से दूर हो जाए। ये आत्माएं क्यों भगवान के नजदीक जाए, ये तो मेरी मुरीद है, भगवान के क्यों बने, तो वो पछाड़ेगी, पीछे पड़ेगी, आपको दूर करेगी। तो बाप से पछाड़ने के लिए, हाँ पीछे करने लिए माया कितना फोर्स करती है। फिर कई बच्चे तो टूट भी पड़ते हैं, अब माया ने इतना फोर्स किया, पीछे पीछे लेती गई, तो टूट पड़ते हैं कई बच्चे। बाप को याद न करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते हैं और माया गिरा देती है। अब कोई खड़ा करे और कोई गिराए तो बेचारे का क्या हाल हो जाए। तो बाबा खड़ा करते हैं, माया गिराती रहती है। बाप कहते हैं कभी हार नहीं खानी है, कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। बाबा सावधान करते हार नहीं खाओ और माया हार खिला देती है। बाबा कहते कोई नई बात नहीं, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प ऐसे होता है, कोई नई बात नहीं, माया जीत अंत में बन ही जाएंगे। चलो बाबा को विश्वास है कि अंत में माया जीत बन ही जाएंगे। रावण राज्य खलास तो होना ही है, फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं, निश्चय रखो कल्प कल्प हम माया जीत बनी है। अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। बुद्धि को खाली रखा, हाँ मन को खाली रखा, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं किया, तो फिर खाली मन शैतान का घर बन जाता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मन बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। इसको ही क्या कहा जाता है, सेफ कैसे रखेंगे, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की तो बात ही नहीं है, स्वदर्शन चक्र से हिंसा की ये तो गले काटे ये तो बात ही नहीं है। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं, देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पतित दुनिया की रसम रिवाज और देवी देवताओं की रसम रिवाज में बहुत अंतर है। पतित दुनिया में पतितों की रसम रिवाज कैसी है और देवताओं की रसम रिवाज कैसी होगी, कितना अंतर। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो तुम्हारी बुद्धि में है, अब क्या है हमारी बुद्धि में, कि आज से 5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, तो बाप ने समझाया है वो है फर्स्ट क्लास, वो है सेकंड क्लास। तो त्रेता को बाबा कहते नई दुनिया नहीं कहेंगे, तो सतयुग को नई दुनिया कहेंगे तो वो है फर्स्ट क्लास और त्रेता युग हो गया सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए, जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। हाँ, ये कितनी ऊंची बातें वो सुने और वंडर खाए। कोई कोई वंडर भी खाते हैं, कहते हैं ना वंडर खाते, माना कहते भी है आप लोगों का ज्ञान बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा आप सुनाते हो, सबको सुनना चाहिए, ऐसे भी कहते हैं। परंतु फिर क्या कहते, हमको तो फुर्सत नहीं है। तो परंतु फुर्सत नहीं है जो पुरुषार्थ करें, है बहुत अच्छा ज्ञान, सबको लेना चाहिए, पर हमको फुर्सत नहीं है। फिर सुनते ही पवित्र जरूर बनना है, अगर अच्छा ज्ञान है तो उसको सुन करके फिर धारण करना है, पवित्र जरूर बनना है। ये काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है, उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। परंतु काम विकार उनों की जैसी पूंजी है, एक तो धन उनकी पूंजी है, धन को कैसे छोड़े, मोह ममत्व कैसे हटाएं, इतना व्यापार इतना बड़ा बिजनेस है कैसे वो कोई कम थोड़ी करेंगे, इसलिए उसमें ही बुद्धि है। या तो फिर काम विकार जैसे उनकी पूंजी है, यही मेरी संपत्ति है काम विकार, काम विकार को हम कैसे छोड़ सकते, ये तो हमारा भोजन है, कई ऐसे भी समझते हैं। परंतु काम विकार उनों की जैसे पूंजी है, इसलिए वो अक्षर भी बोलते हैं। कई गीता के से गीता में भले भगवान ने कहा कामेशु क्रोधेशु इनको जीतो, लेकिन कई लोग जो टिप्पणी करते इसमें डालते हैं ना, तो टिप्पणी में ये नहीं कहते काम विकार, वो क्या कहते कामना, उसको कामना शब्द कह देते, इच्छा। अब इच्छाएं तो कई प्रकार की होती है, इतना हल्का कर देते इच्छा शब्द को, पर ये तो काम विकार की बात है। तो बाबा कहते हैं परंतु काम विकार उनों की जैसी पूंजी है, इसलिए वो अक्षर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो। भगवान ने यही अर्जुन को कहा मन को वश में करो, मन को वश में करना माना काम विकार को भी तो जीतना, एक एक विकार को जीतना है ना, तभी कहेंगे ना मन को वश में किया, तो मन को वश में करो। लेकिन मन अमन तब हो, मन कुछ भी न सोचे, शून्य बन जाए, ब्लैंक। अब बाबा कहते हैं ये तब हो जब शरीर में नहीं हो, अब आत्मा शरीर में नहीं है, न्यारी हो गई, कोई हिसाब किताब है ही नहीं, तो फिर मन उसके बारे में सोचेगा भी नहीं, हिसाब किताब है तो मन कैसे नहीं सोचेगा, वो अमन कैसे बनेगा। लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, जो बिल्कुल कुछ न सोचे। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं है, आत्मा शरीर में आई तो अवश्य मन में संकल्प चलते रहेंगे, अमन होता ही नहीं है कर्म करने के। हाँ, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं है, देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे, अब शरीर है, कर्म करना है, तो कर्मातीत माना बिल्कुल उससे न्यारे, पर शरीर तो खींचेगा ना अपनी तरफ, शरीर को कितनी चीजें चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था कैसे होगी। तो देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। कर्मातीत अवस्था, आज बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। अब मुर्दे को कुछ भी नहीं चाहिए, डेड बॉडी है, अर्थी है, आप उसके ऊपर कुछ भी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ये करो, आत्मा तो उसमें है नहीं, पर हम अपनी भावना व्यक्त करते हैं और उस आत्मा को देखते सोचते तो आत्मा को है, लेकिन शरीर तो उस पर भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो फूल चढ़ाते हैं। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच। अब आत्मा तो निकल गई तो शरीर पड़ा है, तो वो जैसे आत्मा तो बिल्कुल डिटैच है, तो जीते जी मुर्दा अर्थात शरीर से डिटैच, आत्मा शरीर में भी है तो भी कोई इच्छा ही नहीं, कोई कामना ही नहीं, आत्मा देह से न्यारी है, शरीर से डिटैच। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये थोड़ी आएगा। हाँ चाहिए चाहिए तो ये शरीर की बातें, चाहिए चाहिए आत्मा को तो नहीं चाहिए, आत्मा तो है ही सब गुणों की स्वरूप। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है, आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए, एक शरीर छोड़ तो दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है, तो फिर कई समय से हमको कर्म करना ही नहीं है, इसलिए कर्म सन्यासी कहलाते अपने आप को। लेकिन बाबा कहते शरीर में है तो कर्म तो करना ही है, तो फिर तो आत्मा एक शरीर छोड़ तो दूसरा शरीर कर्म करने लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं हो, वो तो परम धाम में मिलेगी, आत्मा को शांति शरीर ही नहीं है। मूल वतन में कर्म होता नहीं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। अब सूक्ष्म वतन की बात क्यों नहीं है, वहां तो सूक्ष्म शरीर है, लाइट का शरीर है, बाकी ऐसे थोड़ी है वो कोई मनुष्य के रूप में है। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, बाप और सृष्टि चक्र को जानना इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में न सफेद पोषधारी है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर है, लेकिन भले ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा को सफेद पोषधारी दिखाते, लेकिन वो हड्डी मांस का शरीर थोड़ी है, वो कपड़ा थोड़ी उनको पड़ा हुआ, कपड़ा तो यह शरीर पर ढकने के लिए है, वो तो साकारी दुनिया में वहां तो है ही लाइट का शरीर, पर वो सफेद दिखाई देता है तो लगता है जैसे कपड़ा वो पहना हुआ, तो वो तो लाइट का आकार है। तो इसीलिए बाकी सूक्ष्म वतन में न सफेद पोषधारी है, न सजे सजाए, यानी विष्णु की तरह जैसे दिखाते सजा सजाया उस रूप में भी नहीं है, और न नाग बलाए पहनने वाले वाले शंकर आदि भी होते हैं। अब नाग पड़े ये गले में तो बाबा कहते ऐसा भी नहीं है, नंगा और एकदम नाग बलाए तन पर लपेटा हुआ या गले में लपेटा हुआ, इस प्रकार भी सूक्ष्म वतन में नहीं होते। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं, ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के दो रूप भी यहाँ है, ये सिर्फ साक्षात्कार का पाठ ड्रामा में है जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। अब इसके बारे में और कुछ नहीं सोचो, क्योंकि अगर सोचते रहेंगे ना तो फिर मुंह जाएंगे, इसलिए भाई इतना ही समझना है सूक्ष्म वतन के लिए, ये साक्षात्कार के लिए बाबा ने सूक्ष्म वतन रचा है। तो बाबा कहते हैं ये वो सिर्फ साक्षात्कार के पाठ ड्रामा में है जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई न पड़े। विक्रम, मेरा आंखें हैं, आंखें पवित्र नहीं है तो फिर यहाँ थोड़ी उसको देख सकते हैं। तो क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए, माया से सेफ रखने के लिए, बुद्धि में और कुछ किचरा न भरे उसे सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वो पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित एग्जाम्पल बनाया, एग्जाम्पल बने ना, कितना जल्दी बाबा संपन्न संपन्न संपूर्ण बने, तो एग्जाम्पल बनाया, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल बन औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। जो बाबा कहते हैं सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, मैं अर्जुन हूँ मुझे सबसे पहले करना है, जो ओटे सो अर्जुन इसी से नंबर वन बने, तो ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन प्रत्यक्ष सैंपल बन औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। कर्म से हम गुणदान कर सकते हैं ना, हम वही व्यवहार करें तो दूसरे प्रेरणा लेंगे, तो ये से गुणदान हो गया। औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो, इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने की बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। स्लोगन, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। ज्ञान दीपक कौन? सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। आज का अव्यक्त इशारा, 24 तारीख आज, सदा हर परिस्थिति में, परिस्थिति बदले लेकिन स्थिति नहीं बदले। हर परिस्थिति में परिस्थिति तो बदलती जाएगी लेकिन स्थिति नहीं बदले। स्थिति सदा खजाने से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। परिस्थिति को क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले जाए? परिस्थिति को क्या शक्ति है जो हमारी स्वस्थिति और संतुष्टता को ले जाए? परिस्थिति का खेल भले देखो, खेल भले देखो, लेकिन साक्षी बन संतुष्टता की सीट पर बैठकर देखो। संतुष्टता की सीट पर साक्षी होकर देखो। आज क्या सेवा करनी है अपने लिए और औरों के लिए, तो अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो आज क्या करना है? पहले तो अपने स्वमान में रहना है। मैं आत्मा सिंपल और सैंपल हूँ। बाबा ने कहा ना सैंपल बनना है, मैं आत्मा सिंपल और सैंपल हूँ। दूसरा योग अभ्यास क्या करना है, मैं आत्मा विश्व शोकेस में एक शो पीस हूँ। बाप दादा का चुना हुआ सर्व के आगे सैंपल हूँ। मुझ आत्मा को देखकर औरों को भी विश्व कल्याण करने की प्रेरणा मिल रही है। बाबा से सर्व शक्तियां लेकर पूरे विश्व में वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर रही हूँ। कितनी ऊंची बातें हैं ना। तीसरा, धारणा क्या करनी है, स्थूल कार्य करते मनसा से वाइब्रेशन फैलाना है। और चौथा, चिंतन क्या करना है, हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन की स्मृति से क्या क्या लाभ होंगे, ये चिंतन करना है। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, एक समाचार आया है, सभी सुने। हरियाणा हिसार के बाप दादा के अनन्य भाई डॉक्टर राम प्रकाश भाई, सब जानते हैं उनको, हिसार जो गए हैं, राम प्रकाश भाई डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर थे, हम भी गए हैं उनका उनका जो क्लिनिक है वो भी हमने देखा। लेकिन बाबा की इतनी सेवा करते थे, बात मत पूछो। वो क्लिनिक क्या था, हॉस्पिटल क्या था, वो जैसे बाबा की सेवा का स्थान था, और सब प्रकार की मदद भी करते थे। तो डॉक्टर राम प्रकाश भाई जो 22 दिसंबर को शाम 5 बजे अचानक हार्ट फेल की वजह से पुरानी देह त्याग बाप दादा की गोद ली। आपकी लौकिक आयु 71 वर्ष थी, आप 1974 से ज्ञान में थे। भाई जी का पार्थिव देह का अंतिम संस्कार कल 23 तारीख को हो गया। 22 तारीख को शरीर त्यागा और कल 23 तारीख को उनका अंतिम संस्कार हो गया। ऐसी विशेष अथक सेवाधारी महान तपस्वी आत्मा को हमें योग में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साकार बाप दादा की पालना लिए हुए और मधुबन में साकार बाप दादा की पालना लिए हुए और मधुबन में अकाउंट डिपार्टमेंट में अपनी अथक सेवा देने महेश भाई जी को भी आज अपना शरीर छोड़ बाबा की गोद लेकर 1 वर्ष पूरा हुआ है। महेश भाई को तो आप जानते हैं ना, अकाउंट्स में भी थे और सारा मजदूरों को खर्चा देते थे जो भी था, तो फिर वो तो उनको आज 1 वर्ष हुआ महेश भाई को, मधुबन निवासी महेश भाई। ओम शांति। चलो, हम सब डॉक्टर राम प्रकाश भाई की आत्मा को योगदान देंगे।